Lecture on Bhagavad Gita 9.24 given in Faridabad Sector 23 on 6th August 2015 by myself Prashant Mukund Das.
Hare Krishna. तो आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में. प्रोग्राम तो कहीं और प्लान किया था लेकिन यहाँ करना पड़ रहा है, तो ठीक है. अभी हम लोग एक भजन गाएंगे और फिर उससे हम शुरुआत करेंगे. तो कीर्तन टीम, आर यू टायर्ड, थके हुए हैं या करेंगे कीर्तन? ठीक है, थैंक यू. तो जिनके पास बुक्स नहीं है बुक ले सकते हैं या फिर भजन निकाल सकते हैं. हम भजन गाएंगे जीव जागो. जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले. जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले. बोले जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले. कौ तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले. कौ तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले. जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले. बोलो जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले. अजीबो बोले ऐसे संसार बितरे. अजीब बोलिया ऐसे संसार भीतरे. भूलिया रो हिले तुम्ही अविद्यार भरे. भूलिया रो हिले तुम्ही अविद्यार भरे. जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद बोले. बोलो जीव तुम्हारे लईते आमी आईनु अवतार. तुम्हारे हिते आमी आईनु अवतार. आमी बिना बंधु आरो के अच्छे तुम्हारा. आमी बिना बंधु आरो के अच्छे तुम्हारा. जीव जागो, जीव जागो, पूरा चांद बोले. बोलो जीव पूरा चांद बोले. एनाचियो शधी माया नशिवार लागी. एनाचियो शधी माया नशिवार लागी. आरे नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी. आरे नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे. जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले. बोलो जीव जागो,
पूरा जान बोले भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया से हरि नाम मंत्र लाइला मंगिया से हरि नाम मंत्र लाइला मंगिया जीव जागो तोरा चांद भोले
बोलो बोलो
जीव जागो तोरा चांद भोले तो निद्रा जाओ माया ईशा तेरा कोले तो निद्रा जाओ माया ईशा तेरा कोले जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे
बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे
सबको बोलना पड़ेगा साथ में नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा हृदय से आवाज आनी चाहिए क्या जोर से बोलिए
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे
आपकी बारी
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरि बोल
हरे रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे
बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम
जय
जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले
बोलो
जीव जागो गौरा चांद
बोले जीव जागो गौरा चांद बोले
जीव जागो गौरा चांद बोले
जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय
जय प्रभुपाद
श्री राधा गोविंद भगवान की, शिष्य पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम आनंदे अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिम्रंध्रस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाते शब्दकांतिकं। वंदेहं श्री गुरुं श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में, जो कि वर्षा के कारण अंदर आयोजित किया जा रहा है। तो आज का हमारा श्लोक है नवे अध्याय का 24वां श्लोक। तो हम इसकी चर्चा करेंगे, आप लोग साथ में दोहरा सकते हैं। अहम ही सर्व ज्ञानम भोक्ताम च प्ररुरेव प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतच्यवन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्वेनस्तच्यवन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसार में जो कोई भी यज्ञ है वो क्या है, सिर्फ एकमात्र उसका भोक्ता मैं ही हूँ। उन्होंने अनेकों श्लोकों में बोला, और 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम रगच्छति। उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है जो ये जानता है कि सारे के सारे यज्ञों में भोक्ता कौन हूँ, मैं हूँ। लोग क्या समझते हैं भोक्ता कौन है? हम हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर है कि नहीं? कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, तो उसके ऊपर क्या लिखा था? कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम, कंज्यूमर। मानते हैं कि नहीं? तो कंज्यूमर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाजी, उपभोक्ता। भोक्ता नहीं बोलता। तो जो उपभोक्ता है, इसका हम मतलब कि ओरिजिनल भोक्ता कौन है? कृष्ण। और उनके द्वारा बची हुई वस्तुएं, उनके द्वारा पैदा करी वस्तुओं का उपभोक्ता हम है, कंज्यूमर्स है। तो देखा जाए तो अगर हम साइंटिफिकली भी समझे तो हम लोग भोक्ता नहीं है, लेकिन हम इनडायरेक्टली ये समझते हैं कि संसार के भोक्ता हम हैं। इसी के कारण इस संसार में जितने भी कष्ट हैं उसका कारण यही है। भगवान ने इसमें बोला, अहम ही सर्व यज्ञानाम, सारे के सारे यज्ञों में भोगने लायक अगर कुछ है तो मैं ही हूँ। इसीलिए कर्म कांडी ब्राह्मणास भी, जो पंडित पूजा करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उसमें चाहे गणेश जी की पूजा करें चाहे साईं बाबा की पूजा करें, जब तक उसके एंड में ये नहीं कहते ओम श्री विष्णु विष्णु विष्णु, तब तक वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आप कभी सुनिएगा, पूर्ण आहुति का मतलब है भगवान विष्णु को बोलना, क्योंकि यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यज्ञ अर्थात विष्णु, यज्ञ अर्थात विष्णु, यज्ञ का मतलब विष्णु। अब भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार भी है जिसका नाम है यज्ञ अवतार। जानते हैं, भगवान का एक अवतार है जिसका नाम है यज्ञ अवतार। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने मात्र से सारी सृष्टि क्या होती है? प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जो लोग माया में हैं, माया तेते हता ज्ञानम प्रपदन्ते अन्य देवता, जो लोग माया के वशीभूत हैं वो क्या करते हैं? अन्य देवी देवताओं से सोचते हैं, चलो भैया कृष्ण भगवान नहीं सुन रहे, थोड़ा सा दुर्गा मैया की पूजा कर ले, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, नहीं पूरी करेगी तो नहीं बांटेंगे। तो व्यापार कर रहे हैं, माँ से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, लेकिन वो ये जानते नहीं है, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि हमारे जीवन में भक्ति करने के लिए सिर्फ एकमात्र भगवान है। कौन? कृष्ण। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। तो ईश्वर तो बहुत है, ईश्वर तो अनेकों हैं, ईश्वर मतलब मालिक भी होता है, बहुत ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है, भगवान बोलते हैं, गणेश जी भी ईश्वर है, लेकिन महेश्वर कौन है? ईश्वरों के महान, सबसे महान ईश्वर कौन है? महेश्वर कौन है? हाँ जी, कृष्ण। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, मैं ही हूँ महेश्वर, सारे ईश्वरों में महान ईश्वर, जहाँ सारे के सारे देवी देवता मेरी ही प्रार्थना करते हैं, वो है कृष्ण, वो है ईश्वर। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, और मैं ही सबके हृदय में भी विराजमान हूँ। भगवान ये भी बोल रहे हैं, मैं गोलोक में भी रहता हूँ और साथ में सबके हृदय में भी रहता हूँ, और साक्षी मात्र से आपके हर एक कर्म का ब्योरा सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है भगवान ने, क्या क्या कर रहे हैं आप अपने घर में वो भी चेक करते रहते हैं, वहां पे डिस्प्ले होता है उनके पास में, वो बताते रहते हैं आज 23 सेक्टर के भक्तों ने इतनी शरारतें करी, सारा इन्फॉर्मेशन जाता है उनके पास। तो जो भगवान है ऐसे, जो सबके मालिक हैं, सबका मालिक एक साईं बाबा कहते हैं, लोगों ने उन्हीं को मालिक बना दिया, सबका मालिक कौन है? एक कृष्ण। ईश्वरम परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण तो कृष्ण है, और फिर हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है। इसीलिए अभी जन्माष्टमी आने वाली है, कब है जन्माष्टमी? 5 सितंबर, तब पता चलेगा कौन भगवान पे पूर्ण भरोसा करता है। रात दिन सेवा करें, हाँ 1 सितंबर से बेचैनी हो जानी चाहिए, जैसे घर में बच्चा आने वाला होता है तो पहले से ही कपड़े तैयार करते हैं, उसके खाने पीने की अरेंजमेंट करते हैं, ऑफिस में भी बोलते हैं सॉलिड सैलरी बढ़ा दीजिए, घर में अभी एक मेंबर बढ़ने वाला है, तो इस तरह से कितना कुछ अरेंजमेंट करते हैं एक भौतिक जीव को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन कृष्ण स्वयं जन्म ले रहे हैं, तो क्या उस दिन हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ कर गुजरना चाहिए कि बस लगे कि हाँ यही असली भक्त मेरा। जैसे एक राजा थे, उनका नाम था मुचुकुंद, सुना है आपने मुचुकुंद राजा के बारे में? सुना है, थोड़ा थोड़ा सुना है। तो राजा मुचुकुंद जो थे वो बहुत पराक्रमी राजा थे, और उन्होंने इतना इतना महान बलशाली राजा कि उनको ऊपर के लोगों से इनविटेशन आता था, जैसे हमारे प्रभु जी को इनविटेशन आया, अभी चले गए बाहर उठ के, तो इनविटेशन आता था उनको कि आप आइए हमारी मदद करिए। हाँ, तो ऊपर के लोग, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, तप लोग, उसमें बुलाया जाता था, तो जाते थे मदद करने के लिए। तो एक बार मदद करने गए अपने परिवार को त्याग करके अकेले जाएंगे। छत्रपति राजा है, सेनापति सैनिक है, ऐश्वर्य भाव में, क्षत्रिय भाव में सेवा करने पहुंचे। युद्ध समाप्त होने के बाद में जब विजय प्राप्त हो गई, सारे देवी देवता जीत गए, असुर मारे गए, तो उन्होंने बोला, देवताओं ने बोलिए, मुचुकुंद राजा आपकी क्या इच्छा है? भाई आप किसी को सेवा में लगाते हो, बाद में बोलते हो ना, अरे प्रभु जी आपने माता जी बड़ी सेवा करी, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? तो ऐसे ही उन्होंने बोला, राजा मुचुकुंद हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? तो राजा ने कहा हाँ कर सकते हैं, कि मुझे वापस मेरे घर भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जाइए। तो जब नीचे की ओर देखा तो पता चला कि नीचे तो युग ही बीत चुका था, जिस युग में, जिस सतयुग में वो उत्पन्न हुए थे और अपने परिवार को छोड़कर मदद करने गए, तो नीचे युग ही बदल गया। अभी युग बदल गया, परिवार नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, जाए तो जाए किसके पास? तो बोले कि अभी तो कोई बचा ही नहीं है, तो मुझे इसी लोक में रख लो। तो बोले नहीं, इस लोक में तो आप नहीं रह सकते क्योंकि आप पृथ्वी लोक के हैं, तो आपको जाना तो उधर ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है, फिर आप कुछ देना चाहते हैं तो एक ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा सदा के लिए ऐसी निद्रा में सो जाऊं, नींद में सो जाऊं कि कोई मुझे उठा ही ना सके। हम लोग भी सोचते हैं ना ऐसा कभी कभी, जब बहुत सेवा होती है जन्माष्टमी में, अब बस घर जाके सोएंगे एक हफ्ते, ना बात नहीं करेंगे, फोन स्विच ऑफ कर देंगे। तो ऐसे ही उन्होंने भी बोला कि आप क्या करिए, मुझे ऐसी निद्रा में जिसमें कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, तो ऐसी नींद में मैं सो जाना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई डिस्टर्ब करे तो मेरी आंखों में ऐसा तेज दे दीजिए, ऐसी शक्ति दे दीजिए कि मेरे देखने मात्र से वो व्यक्ति क्या हो जाए, भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए। देवताओं ने कहा तथास्तु, कहकर राजा मुचुकुंद को भेज दिया और जो मुचुकुंद थे वो आकर अपने एक स्थान में पृथ्वी में रहने लग गए। धौलपुर, धौलपुर के पास उनकी गुफा है, मुचुकुंद केव्स ऑफ मुचुकुंद, मुचुकुंद की गुफा है, तो वहां आकर वो रहने लगे और उस स्थान में वो रहते थे। तो जो भगवान कृष्ण थे उनका एक दुश्मन था मथुरा में, क्या नाम था उसका, कंस को तो मार चुके थे, उसके बाद भी एक और दुश्मन था, जरासंध। जरासंध ऐसा था जो कि दो भागों में पैदा हुआ था, लेफ्ट एंड राइट, और क्योंकि ऋषि ने एक फल दिया था राजा को कि आप इस फल को अपनी पत्नियों को खिलाइए, तो उन्होंने दो रानियों को खिलाया, दोनों रानियों से आधा आधा उन्होंने क्या किया, एक फल को आधा आधा बांट लिया था, तो आधा बच्चा एक का, आधा बच्चा एक का, तो उन्होंने क्या किया, अरे दोनों बच्चे किस काम के आएंगे, तो उन्होंने दोनों को डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन एक राक्षसनी थी, वो बच्चे खाती थी, तो उसने देखा कि अरे नीचे तो दो मांस पड़ा हुआ है खाने योग्य मेरे लिए, तो उसने जब उनको उठाया तो फिर क्या हुआ, उनको देख ही रही थी, ओहो अगर ये पूरा होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही टच किया तो वो दोनों दिव्य बालक, दोनों आधे आधे इससे जुड़कर एक शक्तिशाली बालक बना, जिसका नाम था जरासंध। और उसको मारने की भी योग्यता यही थी कि ये तभी मरेगा जब इसको दो भागों में फाड़ा जाए और फिर एक पार्ट इधर और एक पार्ट उधर, अगर इधर इधर फेंका तो वो वापस उसमें शक्ति थी, मैग्नेटिक वो जुड़ जाते थे, चुंबक के आकर्षण से जुड़ जाते थे। तो भीम ने जब उनको मारना चाहा तो अंत में भीम के द्वारा मारे गए। तो भीम को भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि इसके आधे भागों को फाड़कर आधा इधर फेंक दो, आधा इधर फेंक दो। इस तरह से जरासंध की मृत्यु हुई। लेकिन जब जरासंध मथुरा पर निरंतर आक्रमण करता था तो भगवान कृष्ण वो हरा देते थे उसको। कितनी बड़ी सेना थी पता है आपको जरासंध के पास? 23 अक्षुणी सेना। महाभारत के युद्ध में सिर्फ 16 अक्षुणी सेना थी। कितने लोग थे? अरबों खरबों लोग। और जरासंध अकेले के पास कितनी सेना थी? 23 अक्षुणी सेना। और कितने लोगों से भगवान लड़ाई करते थे? अकेले। भगवान की सेना में वो अकेले स्वयं कृष्ण बलराम बस, ज्यादा से ज्यादा। और जरासंध 23 अक्षुणी सेना लेकर चढ़ जाता था मथुरा के ऊपर, और भगवान अकेले उन अरबों खरबों सैनिकों को मारकर और जरासंध को छोड़ देते थे, मारते नहीं थे, भगा देते थे। 17 बार जब इस तरह हुआ तो जरासंध को कॉन्फिडेंस हो गया कि अभी कृष्ण तो मेरा वध नहीं कर पाएगा, उसकी बस की बात नहीं है, जबकि भगवान छोड़ रहे हैं उसको, छोड़ रहे हैं। लेकिन उसको विश्वास हुआ कि कृष्ण के बस की बात नहीं है, बात नहीं है कि मेरा वध कर सके। तो फिर जब इस प्रकार से कई बार भगा दिया गया तो वो शिशुपाल को ट्रेनिंग देता है। व्यक्ति फेल भी हो जाए है ना, तब भी ट्रेनिंग देना छोड़ता नहीं, उसे लगता है मैं बेस्ट हूं। शिशुपाल को कहता है कि कृष्ण तुम्हारी पत्नी को लेकर चले गए, तो तुम तुम्हारी बहन उसको लेकर चले गए, पत्नी को किसको, रुक्मणी को लेकर चले जाएंगे, तुम हार क्यों मान जाते हो? डोंट लूज होप, आशाएं नहीं छोड़नी चाहिए। मन मरा माया मरी मरमर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर। व्यक्ति मर जाएगा लेकिन उसकी आशाएं समाप्त नहीं होती हैं, तो तुम शिशुपाल आशाएं क्यों समाप्त कर देते हो? कम से कम आशा होप तो रखो कि एक दिन रुक्मणी तुम्हें मिलेगी, प्राप्त हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। जबकि खुद फेलियर है लेकिन दूसरों को सलाह दे रहा है, चर्चा कर रहा है, दूसरों को बता रहा है। तो भगवान पर उसने 18वीं बार फिर से आक्रमण कर दिया, 18वीं बार फिर से आक्रमण किया। तो इस बार भगवान भाग गए। सुना है आपने क्यों भाग गए भगवान? डरते थे मार देगा भगवान, क्यों भाग गए बताइए, क्या कारण था? हाँ जी, वध तो पहले भी नहीं किया 17 बार, इस बार भी भगा देते उसको, क्यों खुद क्यों भागे? तो भागने के पीछे तीन कारण आचार्यगण बताते हैं। पहला कारण कि जब जरासंध वहां से भागा, आया आक्रमण करने, तो भगवान कृष्ण के पीछे एक ऐसा राक्षस पड़ा था जिसका नाम था कालयवन। कालयवन भगवान को नष्ट करना चाहता था, लेकिन भगवान ने सोचा अरे तो मक्खी मच्छर जैसा है मेरे सामने, इसको मारूं क्यों, इसको तो किसी के द्वारा मरवाया जाएगा, तो किसके द्वारा मरवाऊं? तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं मुचुकुंद की गुफा में ले जाता हूं और मुचुकुंद की गुफा में उससे इसको मरवा देता हूं। तो कालयवन को मरवाना पहला कारण था कि कालयवन की मृत्यु। दूसरा, मुचुकुंद को क्या करना था? उनको दर्शन देने थे। मुचुकुंद इतने दिनों तक भगवान के भक्तों की, देवताओं की सेवा किया और भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे उसे, तो बेचारा भगवान के दर्शन की अभिलाषा में सो गया था और बोला जब उठूं तो मेरे नेत्रों से कोई भस्म हो जाए, तो अभी भस्म करने वाला कोई चाहिए और उसके बाद भगवान दर्शन भी देंगे उसको, उसकी अभिलाषा। और तीसरा कारण ये था कि जो ब्राह्मण थे उनसे जरासंध ने आशीर्वाद लिया, कहा कि हे ब्राह्मण गण मथुरा में रहने वाले, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मैं कृष्ण को हरा सकूं और मथुरा पर विजय प्राप्त करूं। तो भगवान को जब ये पता चला कि ब्राह्मणों ने क्या कह दिया है, तथास्तु, तो भगवान का एक नाम क्या है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गायों और ब्राह्मणों के हितैषी हैं, रक्षक हैं। तो भगवान ने सोचा ब्राह्मणों ने अब कह ही दिया है कि तुम जीतोगे, तो चल तू मथुरा पे चढ़ाई कर ले, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो भगवान जब जाने लगे तो वहां पर भगवान जब भागते भी हैं तो देखिए, हम भागते हैं तो हमारा नाम होता है भगोड़ा, भगवान भागते हैं तो उनका नाम होता है रणछोड़। कितना सुंदर, डाकौर जी में मंदिर है रणछोड़ जी राय, रणछोड़ राय मंदिर। तो इस तरह से भगवान वहां से भागे और कालयवन पीछे से आवाज लगा रहा था, ओ धूर्त कहां भागता है, जरासंध से हार कर भाग रहा है, मुझसे भी भाग रहा है, चला मेरे तन की खुजली मिटा, थोड़ा लड़ाई कर मेरे से। तो कई लोग ऐसे आपको भी परेशान करेंगे जीवन में, थोड़े अहंकारी लोग होंगे, थोड़ा पैसा होगा, शक्ति होगी तो आपको थोड़ा टच करेंगे, हाँ बड़े साधु बनते हो, जरा देखें कितना क्रोध आता है आपके अंदर, टच करेंगे आपको बार बार, आपके उसी पार्ट पर टच करेंगे, बहुत माला कर रहे हो, साधु बन गए हो, टीवी नहीं देखोगे अब, ये देख टीवी, देख टीवी, नई पिक्चर आई, नई पिक्चर देख देख देख, ऐसे करके आपको चाय पी ले, चाय चाय, ऐसे करके आपको आकर्षण करेंगे। या फिर आप ना 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 करो तो फिर क्रोध में लाने के, फिर क्रोध आ गया अगर आपको, बस हो गई भक्ति, हमें पता है कुछ नहीं होता है माला वाला करने से, इतना क्रोध तुम करते हो क्या फायदा हुआ माला करने का। तो इस तरह से लोग आपको भड़काएंगे। तो ऐसे ही कालयवन भगवान को बोल रहा था, आजा आजा भगोड़े आजा, वहां से भाग गया, आ मुझसे लड़, आ आ, ऐसे कर रहा था। तो भगवान बोले नहीं नहीं वहां नहीं, आओ एक स्थान पे लड़ेंगे। तो कालयवन कह रहा भागता कहां है, भागता कहां है, अब पीछे पीछे कालयवन और आगे आगे कृष्ण। फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कालयवन आ रहा है ना, हाँ ठीक है, आओ 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 आओ, ऐसे बुला रहे हो, कालयवन भागता है, रुक नीच कहां जाता है, रुक, ऐसे करके भगवान को गालियां दिए जा रहे हैं। और जाते जाते भगवान गुफा में चले जाते हैं, मुचुकुंद की गुफा में, जहां राजा मुचुकुंद क्या किए थे, विश्राम कर रहे थे, और अपना पीले रंग का पटका उतार कर उसके ऊपर डाल दिए। अभी ये अंदर जैसे ही एंटर किया तो बोला, वाह भाई वाह, कमाल है भाई, मेरे को तो वहां से यहाँ तक भगा लाया, मथुरा से धौलपुर तक, और तू भगा लाया यहाँ पर, और यहाँ का आराम कर रहा है, इतना थक गया है? तो नीच कहकर दोबारा से क्या किए, और जो कालयवन था खींच के एक लात मारा यहाँ पेट के पास में। जब मारा तो अभी आप खुद सो रहे हो और आपको कोई चोर से लात मारे तो क्या करेंगे, आप भी क्रोध की अग्नि में भस्म कर देंगे सामने वाले को, मंगला आरती के लिए उठा दिया सुबह सुबह 4 बजे, लात मार दी मेरे को। तो इस तरह से जब कालयवन ने लात मारी तो वो उठकर बैठ गए राजा मुचुकुंद।
और जैसे ही उठे तो उनके नेत्रों से क्या निकली? अग्नि निकली। अग्नि निकलते ही वो पूरा भस्म हो गया। अभी वो हैरान हो गया राजा मुचुकुंद, बोले अबे कौन था पता तो चल जाता, ये तो भस्म भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, नाम बात पर कुछ पूछ लेता एड्रेस, इसकी अस्थियां तो पहुंचा देता घर पे, कौन आया पूरा भस्म हो गया, राख बन गया, अभी पूछू किससे। तो वहां भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि राजा मुचुकुंद चिंता मत करिए, ये जो था एक राक्षस था कालेवन, जिसको आपने अपने नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया है। तो इस तरह से बोलने पर फिर वो पूछते हैं, ठीक है वो तो मर गया लेकिन आप कौन है, हु आर यू, बीच में आए बीच बचाव कराने, हु आर यू। तो उन्होंने बोला, भगवान ने क्या बताऊं, मेरे अनेकों नाम हैं, हजारों नाम है मेरे, तो कौन से नाम से पुकारना चाहते हो, जिस नाम से भक्त मुझे पुकारते हैं मैं तो उसी नाम से उनका दास बन जाता हूँ, मैं तो उन्हीं के पीछे पीछे चल देता हूँ, बस जिस भी नाम से प्रेम पूर्वक मेरे भक्त मेरा उच्चारण करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम प्रेम पूर्वक भगवान को बुलाते ही नहीं है। तो फिर भगवान ने वहां पर बोला कि देखिए राजा मुचुकुंद, इस संसार का नियम है, इस संसार में अगर कोई मुझको प्रसन्न कर ले, एकमात्र मुझको, तो सारी की सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है, सारी की सारी। आस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, आस्मिन रुष्टे जगत रुष्टे। पर प्रॉब्लम ये है, लोग संसार के लोगों को प्रसन्न करने में इतना बिजी हैं कि मुझको प्रसन्न करना ही भूल जाते हैं। मुचुकुंद महाराज को वहां पर प्रीचिंग कर रहे हैं भगवान और बोल रहे हैं कि मैं किन चीजों से खुश होता हूँ। ऐसे एक आचार्यगण बोलते हैं, आए थे हरि भजन को मीठा लगा दाम, आए थे हरि भजन को मीठा लगा दाम, पैसा माया दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो फंस जाते हैं, थोड़ा थोड़ा भजन करें, थोड़ा थोड़ा माया, यहाँ पे भी आएंगे कार्यक्रम में, प्रवचन सुनेंगे, माला भी जपेंगे, और जब प्रमोशन की बात आएगी तो बस हार्ट फेल होने को आ जाता है, अरे इस बार मेरा नहीं हुआ, 10,000 रुपए बढ़ने थे, 2,000 रुपए बढ़ने थे, 3,000 बढ़ने थे, क्यों नहीं बढ़े। धीरे धीरे व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, दो चीजों के कारण, एक भगवान और दूसरे आपके पुराने कर्म, कर्म फल, जो कर्म करके आए उसी का तो फल मिलेगा, और भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, हाँ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप भगवान से मांगते रहिए लेकिन अगर आपके कर्म फल में नहीं होगा तो भगवान नहीं देंगे, जब तक आप उनके पूर्ण रूपे समर्पित भक्त नहीं बन जाते। और पूरे भक्त बन गए तो उसके बाद अगर नहीं भी होगा तो भगवान प्रदान कर देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने प्रदान किया, कुछ भी नहीं मांगा लेकिन फिर भी भगवान ने 10,000 सालों तक राजगद्दी प्रदान करी। तो इस तरह से अगर आप नहीं भी मांगेंगे तो भी भगवान आपको प्रदान कर देंगे, लेकिन उसके लिए पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। हाँ, पूर्ण समर्पण करने का तरीका क्या है, जब बैंक में डकैती पड़ती है, अब बंदूक लेके कोई सामने आ जाए कि गोली मार दूंगा, तो आप क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, हाथ उठाते हैं, हैंड्स अप बोलता है, तो क्या करते हैं? हैंड्स अप करो, हैंड्स अप, हैंड्स अप, अरे डरते हैं, हैंड्स अप करिए। हाँ, और हैंड्स अप करके क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, अपनी जो माया है ना उसको अब समाप्त कर दीजिए, मुझ पर मत चलाइए, अब मैं हाथ खड़े कर दिए हैं, बहुत हुआ ये संसार का जन्म मृत्यु चक्र, बार बार उसी पैसे के लालच में मैं फिर माता की गर्भ में आता हूँ, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जटरे शरीरे जटरे सैनम, मुझे बार बार इस जंजाल में फंसना पड़ता है, इस बार माफ कर दो, दोनों हाथ करके। गौरंग महाप्रभु ने भी इसी तरह दोनों हाथ किए हुए हैं कि हमें पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पण करना है, फिर भगवान अपनी माया की गोलियां चलाना बंद कर देंगे, जैसे डाकू बंद कर देता है पिस्टल चलाना। ऐसे एक बार एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, तो एक छोटी सी मछली थी, तो देखा उसने कि सारी मछलियों में वाद विवाद हो रहा है, परेशान घूम रही है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, शायद इस कौन नहीं जाती थी, हरे कृष्णा नब नहीं जानती थी, इसलिए बड़ी परेशान थी। तो उस छोटी मछली ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान है? अरे तुझे नहीं पता, आजकल एक मछुआरा आता है और खड़ा होता है और अपना जाल फैलाता है, और जाल फैलाकर सारी मछलियों को कैद कर लेता है और बाजार में जाकर काट काट के बेच देता है, और लोग उसको स्वादिष्ट भोजन समझकर खा जाते हैं।
अच्छा हमारे परिवार के लोग मारे गए, तुझे तो नहीं पता, तू तो छोटी मछली है, छोटी मछली है, छोटी मछली है, कह के बार बार उसको प्रताड़ित कर रहे थे। वो बोले कि मैं छोटी तो हूं, मैं जानती हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ, बुद्धिमान हूँ। क्या? कि मैं ना तो कभी पकड़ी गई हूँ ना कभी पकड़ी जाऊंगी। अच्छा ऐसी क्या तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी है, ऐसा क्या तरीका तुमने जुगत लगाई जिससे ना कभी पकड़ी गई हूं ना कभी पकड़ी जाऊंगी? बोले देखिए, जब ये जो मछुआरा अपना जाल फैलाता है तो मैं जो मछुआरे के पांव है ना उसी के नीचे छुप जाती हूँ। तो जब वो जाल फैलाता है तो कभी अपने पांव पर तो जाल नहीं फैलाएगा, वो तो पानी में जाल फैलाता है और दो सीढ़ियां नीचे उतरता है पानी में और वहां खड़ा रहता है नदी के किनारे और दो सीढ़ियों पे खड़े होकर जाल फैलाता है। तो मैं तैर कर उसके पांव के नीचे चले जाते हूँ कि आ गया मछुआरा। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो समझ में आई, इसलिए तो बच जाती हो। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे लिए शिक्षा है कि संसार में भगवान जब अपना माया रूपी जाल फैलाते हैं, आओ फंस जाओ इसमें, माया मोह माया जंजाल में फंसो, तो सब फंस जाते हैं। हाँ फंस गए। लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, वो एक तो अपने को सबसे छोटा समझता है, मैं तो छोटी मछली हूँ, मेरे में योग्यता ही कहाँ है। चाहे कितना भी योग्यशाली हो लेकिन उसे क्या समझना चाहिए, मैं तो सबसे छोटी मछली हूँ, I am so small, मैं कितनी छोटी मछली हूँ। और दूसरा, सदा जो जाल फैलाने वाला है कौन, कृष्ण, उनके कहाँ रहना चाहिए, चरणों में रहना चाहिए। चरण में रहेंगे अगर कृष्ण के तो कितना भी बड़ा जाल हो तो उसमें कभी हम फंसने वाले नहीं है। हा? भगवान ने कहा मेरी जो माया रूपी शक्ति है कैसी है, दुरत्या, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। माया देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव य प्रपद्धन्ते माया में ताम तरन्ते ते। भगवान ने भगवद गीता में आंसर भी दिया इसी स्टोरी का कि जो मेरी शरण में रहेगा वो क्या कर पाएगा, इस माया रूपी जंजाल से बच पाएगा। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली लोग बचना नहीं चाहते हैं, हम तो फंसे हैं कहां, ग्रह अंधकूपम। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने पिता को, प्रीचिंग करते हैं, कहां फंसे हो तुम हिरण्यकश्यपु, ग्रह अंधकूपम, कूपम मतलब कुआ और अंध मतलब अंधा और ग्रह मतलब घर। कुछ समझ आया? आपका घर जो है कैसा है, अंधा कुआ है। कहे प्रभु जी अंधा कुआ नहीं, लाइटें लगी हुई है, सोफा पड़ा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, माइक्रोवेव भी है, बच्चे का स्कूल की ड्रॉर भी है, किताबें भी है, टेलीविजन भी है, गाड़ी भी है, ठीक है ये सब है, लेकिन अगर उसको माइन्यूट सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो क्या है, ग्रह अंधकूपम। शास्त्र कह रहे हैं कैसे अंधकूपम है कि जब पहाड़ पर वर्षा के समय बारिश होती है तो पानी के भाव से बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं और गड्ढे होने से आपने देखा है बारिश के समय में घास उग जाती है, इस गार्डन में भी उग जाती है जंगली घास। एक तो पानी पड़ा तो मिट्टी बह गई, गड्ढा हो गया और उसके ऊपर घास आ गई। अभी क्या होता है, जानवर जब भागते हैं ना उस घास को खाने के लिए, हरी हरी घास, गीली गीली घास, चमाक जंप मारते हैं तो कहां जाता है, सीधा 10 फुट गहरे गड्ढे में। और फिर शिकारी के द्वारा या किसी बड़े जानवर के द्वारा जब आवाज आती है ना, सुनता है पड़ा हुआ रो रहा है अंदर, तो घास हटा के जानवर देखता है या शिकारी देखता है, या तो शिकारी पकड़ लेता है या फिर कोई बड़ा जानवर शेर आदि उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे ही हमने भी क्या किया है, इसके अंदर जो लग्जरीज है ना वो हरी घास है, बस एक स्मार्टफोन और सैमसंग, बस सैम का संग करूंगा तो फिर क्या बन जाऊंगा, मैं भी स्मार्टफोन यूज करके स्मार्ट बन जाऊंगा। साधु संग करना चाहिए तो क्या करते हैं, सैमसंग, साधु संग नहीं करते हैं, तो सैमसंग रखेंगे, नोकिया रखेंगे या फिर अनेकों अनेकों प्रकार के टेलीविजन, एलसीडी, एलईडी। इस बार दिवाली पे क्या ला रही है बहन जी या प्रभु जी, इस बार दीपावली पे हम लोग ले आएंगे रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, डबल बेड, तो यही प्लान बनाते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। क्या किस लिए जीवन मिला, ग्रह अंधकूपम में गड्ढा खोदते जा रहे हैं और हरी हरी घास से उसको छुपा रहे हैं, लेकिन जब मृत्यु रूपी शिकारी आएगा पकड़ने अंत समय में तो हमारी आवाज आएगी, हाँ क्या, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, एक बार और मौका दे दो, बस वन मोर टाइम, गिव मी वन मोर टाइम, एक मौका और, लेकिन मौका देते नहीं है। जिसकी मृत्यु जब होनी है निश्चित काल पर वो व्यक्ति मारा जाएगा। और एक उदाहरण और भागवतम में बहुत सुंदर इसी अध्याय में बताया गया, उसमें बोलते हैं रेशम का कीड़ा, जानते क्या करता है रेशम का कीड़ा, रेशम को बनाता है और फिर खुद कहाँ जाता है, वो रेशम बनाते बनाते इतना बिजी हो जाता है कि उसी रेशम के गोले के अंदर बंध जाता है
और तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है, बाहर नहीं निकल पाता। मतलब आप बनाओ, घर बनाओ, खिड़कियां बनाओ मत, उसके अंदर कोई रास्ता मत बनाओ, बस दीवार इधर 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 इधर, हवा आने की जगह नहीं है, तो क्या होगा? मर जाएंगे। ऐसे ही रेशम का कीड़ा इधर 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 सब जगह दीवार 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 बना देता है और फिर उसी के अंदर तड़प तड़प के मर जाता है। और अगर बाई चांस वो बच भी गया तो जब रेशम निकालने वाले लोग आते हैं ना, वो पत्ते से रेशम निकालते हैं, पौधे से रेशम के कीड़े को पानी में डालते हैं और उबाल, गर्म पानी में 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबालते हैं। उबालने से क्या, गर्म जल में पड़कर उसका शरीर पूरा जल जल कर मर जाता है। लेकिन वो जब मर रहा होता है तब भी वो रेशम को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। ऐसे ही अंतकाल आता है ना, तो आप देखिए कितने लोग अपने बच्चों के, परिवार के, अपने सामान के, अपने चाबी के हाथ पकड़ के रखते हैं जोर से कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, मैं इस शरीर से निकलना नहीं चाहते हूँ। आप ये शरीर नहीं है, आप कौन है? आत्मा है। ये बोलते तो सब हैं, लेकिन जिस दिन एक्सपीरियंस करेंगे तब समझ में आता है। अभी एक लेडी के साथ हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस, अनीता मोरजी नाम की एक स्त्री है। वो क्या किए, उनके पूरे बॉडी में कैंसर हो गया था, लिम्फोमा, बड़े बड़े नींबू जैसे दाने हो गए थे। वो बहुत परेशान थे अपने शरीर को लेकर, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे शरीर से निकाल दो भगवान, निकाल दो, बहुत प्रार्थना करी। हांगकांग में रहती है, इंडियन है, उनके भाई वगैरह हिंदुस्तान में रहते हैं। तो वो बता रहे हैं अभी उनके बुक निकली है कि वो वापस आई अपने शरीर के अंदर और कैसे शरीर से बाहर निकली और शरीर से निकलने के बाद क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो वो कोमा में रही काफी समय तक और कोमा में निकलने के बाद, कोमा में रहने के बाद उनका, उन्होंने कहा मेरा शरीर नीचे पड़ा था और मैं शरीर से बाहर थी, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से बाहर थी। आप भी जाकर देख सकते हैं, गूगल में सर्च करिए अनीता मोरजी, आपको वीडियो मिलेंगे बहुत सारे, 26-27 वीडियो हैं उनके। और उन्होंने बुक लिखी है 28 लैंग्वेजेस में, माय नियर डेथ एक्सपीरियंस, मैंने मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा। और बोले हम इस शरीर से निकलने के बाद इतने हल्के हो जाते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमें हमारी दृष्टि में नजर आता है। उन्होंने बोला मेरा भाई इंडिया से मेरे क्रिया संस्कार करने के लिए एरोप्लेन में बैठ रहा है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बैठ रहा है, वो मुझे पता है एयरपोर्ट से चल चुका है, मेरे परिवार के लोग रो रहे हैं इस डेड बॉडी को ले जाओ जलाने के लिए, क्रिमिनेशन करने, अंतिम संस्कार करने, और मैं इधर वाद विवाद कर रही हूँ। यमदूत कह रहे हैं तुम कोमा में तो हो लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया मरने का। तो मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, मैं इस बॉडी में नहीं रहना चाहती हूँ, ये शरीर में तो बहुत कष्ट है। तो वार्तालाप हुआ और काफी पता नहीं फिर क्या मिरेकल हुआ, भगवान ने क्या कृपा करी कि उनकी बॉडी दोबारा से ठीक हो गई। उन्होंने कहा ठीक है तुम इस बॉडी में रहो लेकिन हम तुम्हारी बॉडी को क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। तो इट हैपेंड, तो पता नहीं सच है झूठ है, वीडियो आ रहा है ऐसा हमने सुना। तो समझना ये चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। लेकिन हम इस जगत में रहते रहते क्या करते हैं, द्वैत चिंताया, ऐसी चिंता करते हैं जिसका कोई यूज नहीं है हमारे जीवन में। दुरत्य चिंताया, ऐसी चिंता जिसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। यही तो चिंता है, कब प्रमोशन होगा, कब सैलरी डबल होगी, कब मेरा मकान ऊपर का बन जाएगा, दो बच्चे हैं, एक को नीचे का दे दूंगा, एक को आगे का दे दूंगा, एक को ऊपर का दे दूंगा, सामने वाले पार्क में पड़ोसी गाड़ी पार्क करता है, वो कौन सा दिन आएगा जब इसकी गाड़ी उठ जाएगी, एक्सीडेंट होगा तब मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूंगा। ऐसे ऐसे चिंता है, दुरुत्त चिंता या, ऐसी चिंता कर रहे हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में। तो आप सोचिए क्या होगा, बोलते हैं चिंता चिता समान है। कैसी है? चिता समान। और चिंता चिता समान है और हमें क्या करना चाहिए, चिंतन, और करते क्या है, चिंता। तो ये जो चिंता है इसका सॉल्यूशन दिया गया भागवतम के 10वें स्कंद के 91 अध्याय के 53वें श्लोक में, उसमें कहते हैं भव पावर्गो ब्रह्मो यदा भवेज जनस्य तरह अच्युत सत समागम सतसंगमो रही तदेव सदगत्वो परावरे से त्वयि जयता मति। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति इस दुरत्य चिंतया से बचना चाहता है, ग्रह अंध कुपम से बाहर निकलना चाहता है, उस माया जाल जिसे हम ग्रस्त आश्रम के नाम से उसकी ब्रांडिंग करते हैं, हम तो ग्रस्त आश्रम में हैं, ग्रस्त आश्रम में हैं, आश्रम में आश्रम 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 नहीं है, वो ग्रह मेदी है। आश्रम तो वो होता है जिसके घर में सदा कीर्तन की ध्वनि आती है। जहां कीर्तन नहीं होता सिर्फ ये होता है, कहां जा रहे हैं जी, कब तक आएंगे जी, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा जी, ऐसी लड़ाई झगड़े जिस घर में है, आज खाने में क्या खाएंगे, कमा कर क्या लाते हैं जो खिलाती रहूं, मैं क्या नौकरानी हूं, या फिर वो कहें क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं। वो ग्रह अंत कूपम, ग्रह मेदी संसार है, ग्रस्त आश्रम नहीं है। आश्रम तो वो है जहां पर कीर्तन ध्वनि आए, वो है आश्रम। तो क्या करना है, तो भागवतम कहती है अच्युता संत समागम, ऐसे समागम में जाइए जहां पर संत हो, सत समागम, जहां अच्छी बातें सुनने को मिले, इस ग्रह अंध कूपम के जाल से कटने का मौका मिले। जैसे चिड़िया की कहानी सुनते हैं आप, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, टनिंग टनिंग सुना था दूरदर्शन। फिर क्या होता था, चिड़िया जब जाल में फंस जाती है तो क्या करती है, हाँ जी क्या कर, उड़ जाती हैं। उड़कर कहां जाती हैं, चूहों के पास। अगर आप जाल में हैं तो कहां जाना चाहिए, चूहे के पास। चूहा कौन है, संत समागम। भागवतम के 10वें स्कंद 91वें अध्याय में बताया, ऐसे संतों के पास जाएं जिनके पास दांत हैं, ज्ञान के दांत, जिससे वो आपके अज्ञानता के जाल को क्या करेंगे, काट देंगे। अभी घर में पड़े रहे ग्रह अंधकूपम में और रोते रहे, हम तो ग्रस्त आश्रम में हैं, आश्रम में, आश्रम है भी नहीं, और ग्रह मेदी संसार में फंसे हुए, और बोले अरे आश्रम का लेबल लगा लिया, आश्रम आश्रम, अरे आश्रम भी बनाना चाहते हो ना तो आश्रम बनाओ, उसमें रोज सुबह मंगला आरती होनी चाहिए, जप होना चाहिए, उसके घर से बाहर से कोई निकले आपके घर से तो आवाज आनी चाहिए क्या, अरे कृष्णा ये सारी इंफॉर्मेशन किसने दी, भगवान ने स्वयं, किसको दी, राजा मुचुकुंद को, और कहा कि तुम भी इसी प्रकार अपने ग्रस्त संसार में फंस गए थे, लेकिन वो तो देवताओं की कृपा हुई कि तुम वहां से नीचे आए, तो तब तक तुम्हारा परिवार समाप्त हो चुका था, अभी क्या करते, वैरागी बन गए। जैसे द्वारका गुजरात में एक बार तीन संत मिले, एक का नाम था ज्ञानदेव, एक का नाम था नरसिंह मेहता, और एक का नाम था तुकाराम। तुकाराम मराठी संत है, ज्ञानदेव भी मराठी संत है, और गुजराती संत है नरसिंह मेहता, आपने सुना होगा तीनों का नाम। जब तीनों मिलते हैं आपस में तो पूछते हैं आप भक्त कैसे बने, हम भी पूछते हैं ना इस्कॉन में आप कैसे जुड़े, भक्त में कैसे बने, तो वो भी तीनों आपस में पूछते हैं आप भक्त कैसे बने, तो तीनों जवाब देते हैं पत्नी के कारण। तो उन्होंने पूछा अच्छा कैसे, तो तुकाराम बोले कि मेरी पत्नी मेरा सहयोग नहीं करती थी, वो उसे मेरी भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं थी, तो उसके व्यवहार से मेरे अंदर क्या हो गया, वैराग उत्पन्न हो गया, वो प्रेम नहीं करती थी, कहती तुम भले तुम्हारे राम भला, मेरे को छोड़ दो, तो मैंने उसे छोड़ ही दिया, मैं अपना भजन करता था। नरसिंह मेहता से पूछा आप कैसे भक्त बने, कह रहे मेरी पत्नी कम उम्र में मेरा साथ छोड़कर परलोक सुधार गई, तो मैं जब अकेला रह गया तो मेरे पास भगवान के नाम के अलावा कुछ था ही नहीं। फिर ज्ञानदेव से पूछा आप कैसे भक्त बने, बोले मेरी पत्नी तो साथ में थी और साथ देती भी थी, लेकिन वो साथ ऐसा दी एक दिन मेरे आचरण को देखकर मुझे बोले कि कथा प्रचार तो बहुत करते हो, लेक्चर बहुत देते हो, हाँ, लेकिन जीवन में अपनाते कुछ नहीं हो, जिस दिन जो बोल रहे हो अगर उसका एक शब्द भी अपना लोगे ना तो असली ज्ञानदेव बन जाओगे, नकली नहीं रहोगे। तो बस वो दिन था कि मेरे जीवन में मैंने सोच लिया अब दृढ़ निश्चय होकर भक्त बनना है। तो ये देखिए पत्नी अगर कई बार सहयोगी भी हो जाती है, वैसे तो फंसाती है, इतने बड़े बड़े राजा होते हैं ना जब जीत कर आते हैं राज्य, तो पत्नी कहती है अच्छा जी मेरे साल मेरे भाई को नहीं दोगे आप सेनापति की गद्दी, तो ऐसे करके अपनी नेत्र सिर्फ हिलाती है ना बोहों को। तो भागवतम कहता है उसकी एक मुस्कान और उसकी एक तिरछी निगाह से इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट टड़ैंग गिर पड़ता जमीन में, हाँ हाँ रानी जो तुम कहो वही ठीक है। तो ये अंधकूपम है, ग्रह अंधकूपम, स्त्री के पास शक्ति दी है भगवान ने, लेकिन पुरुष को क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आप मान लीजिए भक्तों की कृपा हो गई आपके ऊपर और आपको साधु संग मिल गया, तो ये जरूरी नहीं है जो इस्कॉन में जुड़ गया या इस कार्यक्रम में आता है वो कहाँ चला जाएगा, भगवत धाम, ये जरूरी नहीं है। जैसे आपने बहुत मेहनत कर कर आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इस्कॉन में आ गए आप किसकी कृपा से आ गए, आपकी मेहनत से, आपके पुराने जन्म की भक्ति की सुकृति थी या वैष्णवों की कृपा थी, दोनों के मिश्रण से हम आ गए। अभी डिग्री कैसे मिलेगी, भगवत धाम कैसे मिलेगा, गोलोक धाम कैसे मिलेगा, जपने से। ये बात सच है कि नाम भव सागर से पार कर देता है, हरि नाम बिल्कुल सच बात है, लेकिन जपने पर पार करता है, रखने पर नहीं करता। माला लेके घर में रख लिया है, जपना पड़ता है उसको ध्यान पूर्वक, जोर जोर से बोलना पड़ता है क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से राजा मुचुकुंद ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है और आपके जो यहाँ के आयोजक हैं गौरव प्रभु जी, वो बड़े उत्साही भक्त हैं, वो चाहते हैं आप सब जन्माष्टमी में बढ़ चढ़कर सहयोग करें और भगवान के लिए अरेंजमेंट करने के लिए कुछ लक्ष्मी चाहिए होती है, क्योंकि भगवान नारायण है और लक्ष्मी किसकी है, आपकी है, हाँ जी भगवान की है। तो जो दूसरों के घरों में पड़ी हुई है ना, ये जो मोहल्ले में पार्क के सामने घंटी बजाई, बोलिए आपके घर में जो लक्ष्मी है वो आपकी नहीं है, किसकी है, नारायण की है, तो नारायण को दे दीजिए। हो सकता है बहस करें आपसे, तो आप भी मुचुकुंद की कथा सुना देना बैठ के वहां पर, ग्रह अंत कुपम बताना। इसीलिए तो प्रचार किया जाता है कि आप समझ पाए संसार का, कि जो कुछ भी संसार में वो किसका है, भगवान का है। तो आपको मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी, हमें मांगने में तब शर्म आती है जब हमें लगता है ये, अरे इसका पैसा मैं मांगूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये पैसा तो इसका है, अरे उसका कैसे हो गया, लक्ष्मी तो सदा से नारायण की दासी है, तो फिर किसी का पैसा मांगने में कोई शर्म आनी चाहिए। जैसे हनुमान जी, वो जानते थे सीता किसकी है, राम की, भगवान राम की हैं, तो फिर सीता जी को मांगने के लिए हनुमान जी ने क्या किया, लंका तक जला दिया, ये नहीं सोचा कि अरे लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में आने वाले, अरे हनुमान जी इतने बड़े संत हैं, भगवान के भक्त हैं, इतना गुस्सा किया लंका जला दिया, ये कोई तरीका होता है, सीता जी सीधे सीधे मांग लेते, दे रहे हो नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं। ऐसे आप भी जाते हैं, अभी आपको यहाँ से वो मिलेगी हुंडी बुक, आप जाएंगे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो कह रहे नहीं दे रहे तो चले जाओगे, आपको भी समझाना चाहिए क्यों नहीं दे रहे हो, आपकी थोड़ी है, किसकी है, भगवान की है। लेकिन इतना गुस्से में मत बोलना, वो मार भी सकता है, आप हनुमान नहीं है, लेकिन आप उसे प्रेम से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर सकते हैं। देखा जाए तो हम सभी जो हैं इस संसार में कौन है, भगवान ने हम सबको योग्यता प्रदान करी है ना, सबको भगवान ने इक्वलेंट शक्ति प्रदान करी है। आप सब जो हैं वो कौन है, कौन है बताएं, गौरव प्रभु जी आकर यहाँ पर आके बताएं आप सब कौन है, आइए आइए जल्दी, आइए जल्दी प्लीज। गौरव प्रभु जी आपको बताएंगे आप सब कौन है, वो अपने उनके अंदर योग्यता है आपको बताने की कि आप लोग कौन है, तो आपको बताएंगे, सुनिए जरा ध्यान से, आप बताइए, डू इट, इससे बोल लीजिए, ऐसे बोल लीजिए,
हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हम पहले बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी अपनी व्यस्तता के बावजूद यहाँ टाइम से पहुँचे, क्योंकि प्रभु जी की जो सेवा है वो द्वारका मंदिर में है। प्रभु जी ने अपनी जो डिग्री है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लंदन से पढ़ाई करी है और उसके बाद फुल टाइम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में। तो पूरे उत्साह के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हालांकि प्रभु जी का जो प्रोग्राम था वो पार्क में था, लेकिन बरसात की वजह से हमने यहाँ प्रोग्राम करा से, तो एक बार पूरे उत्साह से हरे कृष्णा होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने मुझे बोलने का मौका दिया है। वैसे मैं आप सभी से पूछता हूँ कि वास्तव में हम कौन है, बताइए सभी, नित्य कृष्णदास, प्रभु जी ने बताया नित्य कृष्णदास, और बताइए सबसे, मैं तो प्रश्न ही पूछता रहता हूँ, भगवान के अंश हैं, माता जी बताइए, भगवान के शाश्वत दास। वैसे यहाँ पे सभी जो ना बुद्धिजीवी हैं, सबको इतना इतनी बुद्धि है कि सबको वास्तविकता पता है, लेकिन वास्तविकता में हम सभी राजा हैं, क्योंकि सबके अंदर हरि बोल, जो माता है वो रानी है सारी और प्रभु जी सारे राजा हैं, क्योंकि पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में एक राजा हुआ करता था नगर का, मतलब नगर सेठ, एक राज्य के राजा जो कार्य करते थे मंदिर के निर्माण के, पूरे नगर के निर्माण में। और ऐसे ही कलयुग में हर घर में राजा हैं, वो हर चीज के निर्माण में कार्य कर रहे हैं, कोई रोड बनवा रहा है, कोई कम्युनिटी सेंटर की सफाई करवा रहा है, क्यों प्रभु जी, तो हर कार्य में, घर में कोई कहते कि ये काम करना है, बोलते अच्छा मुझे बोल रहे हैं, तो सारे राजाओं वाले गुण हर व्यक्ति के अंदर डाल दिए। पहले एक राजा होता था, अब हर व्यक्ति के अंदर राजा के गुण है। तो आज जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम जो आने वाला है 5 सितंबर को, अब इतना बड़ा प्रोग्राम बनाना है, इतना बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? धन की। क्योंकि तो धन होगा तभी तो हम ऐश्वर्यशाली जन्माष्टमी मनाएंगे। पिछले साल जो इस्कॉन मंदिर का रिकॉर्ड था, 50,000 भक्त आए थे फरीदाबाद में। आप भक्तों में उत्साह नहीं आ रहा? 50,000 भक्त दर्शन करने आए थे राधा गोविंद देव जी के, और पूरा दिन मिडनाइट तक प्रसाद सभी के लिए चलता रहा रेगुलर। और 50,000 भक्त आएंगे तो लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगी, तो लक्ष्मी कौन खर्च करेंगे? राजा खर्च करेंगे या साधु खर्च करेंगे? राजा करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हर घर से हम राजा से कुछ ना कुछ कलेक्शन लें, उनसे सहयोग लें कि भगवान की सेवा में करें, क्योंकि सेवा सभी करना चाहते हैं। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे?
माया की।
माया की। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम तो कम से कम भगवान की सेवा कर रहे हैं और लोगों को भी भगवान की सेवा में नियुक्त करें। तो ये हुंडी बुक है, मैं झोली में लेके सभी के पास आऊंगा प्रोग्राम के बाद में, और सभी जितने भी राजा और रानियां हैं यहाँ पे, सभी भगवान की सेवा में कार्य करें। कितना भी व्यक्ति से दान लें, कोई इसमें कोई वो नहीं है, उसको हुंडी बुक दें कि ये आपका सेवा में गया हुआ है पैसा, तो आप कर सकते हैं सभी। और प्रभु जी का सहयोग है, प्रभु जी इतना सहयोग करते हैं। तो एक बार प्रभु जी के लिए फिर से हमारे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अभी हमारे गोपाल गोपालगंज स्कूल के स्कूल